दिन भर 11 अगस्त रविवार, मैं हूं आदर्श राठौर। भारत प्रशासित कश्मीर में छठे दिन कर्फ्यू जारी। ईद से पहले श्रीनगर के कुछ इलाकों में दी गई ढील वापस ली गई। प्रशासन ने हालात को बताया शांतिपूर्ण।
आज 12 बजे के आसपास सडनली कुछ ऐसा हुआ कि फिर से श्रीनगर में हमें दिखा कि सब हर तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने बैरिकेड्स लगाने शुरू किए, सिविलियंस का मूवमेंट एकदम से बंद हुआ।
विशेष रिपोर्ट में सुनेंगे कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के दावों पर क्या सोचती है दुनिया।
इसको कोई इतनी अहमियत नहीं दे रहे, लेकिन एक इशू मानते हैं। हर जिस देश से आप बात करें वो मानता है कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसका हल होना भी बाकी है।
उत्तरी केरल में बाढ़ मचा रही है तबाही, अब तक 67 लोगों की मौत। जानेंगे क्या है हालात, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। भारत प्रशासित कश्मीर के मुख्य शहर श्रीनगर में एक बार फिर से पूरी तरह बंदी का माहौल है। पिछले 2 दिनों में कर्फ्यू में जो ढील दी गई थी उसे अब फिर से लागू कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है ये साफ नहीं हो पाया है। सड़कों पर फिर से सन्नाटा छा गया है। फोन लाइनें और इंटरनेट ठप हुए करीब 1 सप्ताह होने को है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी जनता को भरोसा दिलाया था कि वो ईद मना सकेंगे। हांगकांग में कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें हैं, जहां शैम शुई जिले में पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के जुलूस पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। इस मार्च की इजाजत नहीं मिली थी। शहर के विक्टोरिया पार्क इलाके में एक दूसरी रैली आयोजित थी जिसे पुलिस ने इजाजत दे दी थी। हांगकांग एयरपोर्ट के अराइवल हॉल में धरने का आज 3रा दिन है, जबकि सरकार विरोधी प्रदर्शनों का 10वां सप्ताह होने जा रहा है। एक प्रदर्शनकारी का कहना है, मुझे लगता है कि पुलिस को पहले से ही पता है कि प्रदर्शनकारी क्या करेंगे, इसलिए पुलिस के साथ सीधे टकराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे निर्दोष लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। इसलिए फ्लैश मॉब में हम अपना मकसद पूरा कर लौट जाते हैं। पुलिस के हाथों पकड़े जाने का कोई मतलब नहीं है। ये थे एक प्रदर्शनकारी के शब्द। दक्षिणी अलगाववादी लड़ाकों ने यमन के प्रमुख दक्षिणी पोर्ट पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने अदन के कई हिस्सों से सरकार समर्थित सेनाओं को पीछे धकेल दिया है। अलगाववादियों का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति पैलेस पर कब्जा कर लिया है। सऊदी नीत गठबंधन सेनाओं ने अलगाववादियों को भारी हवाई हमले की चेतावनी दी है। कुछ दिन पहले तक ये दोनों सेनाएं सऊदी नीत गठबंधन के साथ मिलकर हूती विद्रोहियों का मुकाबला कर रही थी, लेकिन 1 सप्ताह पहले अदन पर हुई बमबारी के बाद ये एक दूसरे के खिलाफ हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक रविवार को 40 लोग मारे गए। यमन में 4 दिन तक चली लड़ाई के बाद संघर्ष विराम पर समझौता हो गया है। शनिवार को नॉर्वे की एक मस्जिद में हुई गोलाबारी की जांच पुलिस चरमपंथी कार्रवाई के नजरिए से करेगी। सहायक पुलिस प्रमुख रून स्कोल्ड ने कहा कि नॉर्वे मूल का हमलावर घोर दक्षिणपंथी और अप्रवासी विरोधी विचारधाराओं वाला है। शनिवार रात हथियारबंद हमलावर ने मस्जिद में घुसते ही गोली चलानी शुरू कर दी थी। नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग ने नफरत फैलाने के खिलाफ कड़ाई से निपटने की बात कही है। मस्जिद के डायरेक्टर इरफान मुश्ताक ने कहा, कई सालों से सीक्रेट पुलिस कहती आ रही है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा मुस्लिम है, लेकिन अगर आप पिछले 2 बड़े चरमपंथी हमलों को देखें तो उनमें मुस्लिम शामिल नहीं रहे हैं, इसलिए ये हमारे बच्चों पर असर डाल रहा है। हमें रोज उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। अब समय आ गया है कि नॉर्वे की सरकार अपना पक्ष स्पष्ट करे। इरफान मुश्ताक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया में सरकारी फौजों ने इदलिब प्रांत के एक कस्बे पर कब्जा कर लिया है। 3 महीने पहले आक्रामक फौजी कार्रवाई शुरू होने से पहले ये एक बड़ी सफलता है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि सरकारी फौजों ने अल हबीत कस्बे पर कब्जा किया है। रूस ने गूगल पर आरोप लगाया है कि वो अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हालिया सरकार विरोधी प्रदर्शनों को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। राज्य संचार नियामक ने कहा है कि अगर गूगल और गैर कानूनी प्रदर्शनों को दिखाना जारी रखता है तो रूस इसे अपने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप के तौर पर लेगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। कार्यक्रम में बात भारत प्रशासित कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने से पहले जो पाबंदियां लगाई गई थी कश्मीर घाटी में, वो छठे दिन भी जारी रहीं। श्रीनगर में शनिवार को प्रशासन की ओर से लगाई गई बंदिशों को कम करने की कोशिश हुई थी। कुछ जगहों पर कर्फ्यू से राहत दी गई थी और लोग जरूरी खरीदारी भी कर रहे थे क्योंकि ईद कल है। ये सिलसिला सुबह तक जारी रहा मगर दोपहर तक एक बार फिर नाकेबंदी कर दी गई और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि हालात नियंत्रण में हैं और शांतिपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन कुछ देर पहले हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने बात की श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा से और वहां के हालात के बारे में पूछा।
कश्मीर की जहां तक हम बात करें, आज सिक्स डे है जब से कर्फ्यू हुआ था। कल शाम से ही कश्मीर में एक ढील दी गई थी, रिलैक्सेशन थी कर्फ्यू में। गाड़ियों की मूवमेंट देखी जा सकती थी, लोग घरों से बाहर आ रहे थे शॉपिंग के लिए क्योंकि ईद आ रही है, जो ईद अब कल है उसके लिए लोग घरों से बाहर आ रहे थे, गाड़ियां सड़क पे दिख रही थी, तो एक हलचल थी जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती भी कम कर ली गई थी। आज सुबह भी माहौल कुछ वैसा ही था। आज 12 बजे तक सड़कों पे रश था, गाड़ियों की बहुत बड़ी भीड़ थी, ट्रैफिक जैम्स लगे थे कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन दुकानें सामान्य वैसे के वैसे ही बंद थी। लेकिन आज 12 बजे के आसपास सडनली कुछ ऐसा हुआ कि फिर से श्रीनगर में हमें दिखा कि सब हर तरह सिक्योरिटी फोर्सेज ने बैरिकेड्स लगाने शुरू किए, सिविलियंस का मूवमेंट एकदम से बंद हुआ, फिर से वही सन्नाटा शुरू हुआ।
आपके पास कुछ जानकारी है कि ऐसा अचानक क्या हुआ?
जानकारियों की जहां तक बात करें, हम यहाँ पे एक्चुअली क्राइसिस ही जानकारियों की है क्योंकि किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। सारे फोन्स, जितने भी हमारे वेज होते थे कम्युनिकेट करने के, लोगों से सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन गैदर करने के, या कोई भी न्यूज गैदरिंग हम जब करते थे, वो सब ब्लॉक हो गया इसी वजह से क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन हम प्रेस क्लब में बैठे थे, वहाँ पे एक सडनली एक वेव सी आ गई, जर्नलिस्ट भागने लगे, तो हमने पूछा क्या हुआ, उन्होंने बोला हम सोवरा भाग रहे क्योंकि सोवरा में उनका कहना था कि फिर से कुछ हुआ है। तो वो सब उसकी सोवरा की तरफ जा रहे थे लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन नहीं थी क्या हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। एंड उसके आधे घंटे बाद वही जर्नलिस्ट जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि सड़कों पे उनको फोर्सेस ने रोका, जो सड़कें बंद थी, तो सारे के सारे जर्नलिस्ट वापस आए। तो अगेन इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी के पास कोई ऑफिशियल, क्योंकि ऑफिशियल से भी जब हम वो लेते हैं कन्फर्मेशन किसी भी चीज का, वो भी इन्हीं साधनों से होता है।
जो एहतजाज हुए हैं सोरा इलाके में, उसमें जहाँ तक हम समझ रहे हैं कुछ लोग घायल भी हुए थे, उन घायलों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है आपको?
हम कल भी सोरा नहीं जा पाए क्योंकि हम पहले एक रास्ते से जब गए वहाँ पे एंग्री यूथ खड़ा था, उन्होंने पूरे सड़क ब्लॉक की थी। हमने बहुत बिनती, बहुत रिक्वेस्ट की उनसे कि हमें आगे जाने दिया जाए, लेकिन हमें आगे नहीं जाने दिया क्योंकि यहाँ हॉस्टिलिटी बहुत है यहाँ के आम आवाम में मीडिया के प्रति। उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है कि उनको ऐसा लगता है कि नेशनल मीडिया या नॉर्मल जनरल मीडिया ये दिखा रहा है कश्मीर में सब नॉर्मल है और वो ये समझते हैं कि नॉर्मल नहीं है, तो उन्होंने हमें आगे जाने नहीं दिया। तो उसके बाद फिर हमने दूसरा रास्ता लेने की कोशिश की जो सीआरपी अपने ब्लॉक करके रखा था, तो उन्होंने हमें वहाँ से आगे नहीं जाने दिया। तो हम कल ना उम्मीदी के साथ वापस आए, तो आज फिर से हमने कोशिश की थी वहाँ जाने की, लेकिन आज फिर हम नाकाम हुए क्योंकि अगेन फिर से वहाँ पे लोग खड़े थे, प्रोटेस्टर्स खड़े थे जिनने सड़कें बंद थी, जो बहुत गुस्से में थे, जिनने किसी को भी आगे जाने नहीं दिया। तो अभी उन इंजर्ड पर्सन्स पे, उन घायलों पे कोई भी कन्फर्म रिपोर्ट नहीं है, कोई कंफर्म स्टेटमेंट नहीं है, ना ही गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा बोला, ना ही हम खुद उन हॉस्टल में जाके उनको चेक कर पाए।
जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि किसी तरह की कोई घटना, किसी तरह की कोई हिंसा, ऐसी कोई खबर नहीं आई है और उनका कहना है कि राज्य में हालात जो हैं सामान्य हैं। भारत सरकार ने बीते सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 को बेअसर करके भारत प्रशासित कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया। सरकार ने इस प्रदेश को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी विभाजित कर दिया है, लेकिन इसकी घोषणा करने से पहले घाटी से सभी तरह का बाहरी संपर्क काट दिया गया। इंटरनेट बंद करने के अलावा मोबाइल और लैंडलाइन फोन सेवाएं भी बंद कर दी गईं। इस कारण लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा दिल्ली से श्रीनगर गए और वापस लौटे। हवाई यात्रा के दौरान और श्रीनगर में मिले लोगों से उन्होंने बातचीत भी की। लोगों का क्या कहना था, सुनिए दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट हमारे सहयोगी नवीन नेगी से।
मैं सिर्फ 2-3 दिनों के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इसलिए जा रहा हूँ कि ताकि मैं भी देख लूँ कि वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और उनको ये बता सकूँ कि मैं भी ठीक हूँ, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट।
ये आवाज है दिल्ली में एक प्राइवेट बैंक में काम करने वाले आसिफ की। आसिफ ने दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी है। वो पिछले कई दिनों से ना ठीक से सो सके हैं और ना ही खाना खा सके हैं। उन्हें घर सिर्फ इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि संचार के सभी साधन ठप होने की वजह से वे अपने परिवार से संपर्क नहीं साध पा रहे। दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भरने वाले लोगों के चेहरों को अगर ध्यान से देखा जाए तो सभी में एक बेचैनी और डर नजर आता है। हरियाणा के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले 4 कश्मीरी छात्रों को अगले महीने होने वाली परीक्षा की तैयारी करनी थी, लेकिन अब वो आनन फानन में घर लौट रहे हैं।
घर वालों से बात नहीं हो पा रही थी, वही तो मेन वजह है, हम जा रहे थे इसीलिए घर।
हमने SMS किया, लैंडलाइन से वो कॉल की थी, वैसे ही डायरेक्ट कॉल की थी, नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं। और इंटरनेट सारा, कम्युनिकेशन सारा बंद है। और फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए, पढ़ भी नहीं पा रहे थे, एंग्जाइटी हो रही थी, तो फिर हमने सोचा कि नहीं, घर ही जाना बेटर है।
दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने वाली शफूरा के लगेज और हैंडबैग में भी बस खाने पीने का सामान ही है। वो कहती हैं कि केंद्र सरकार के इस फैसले से कश्मीर के लोगों का केंद्र पर से भरोसा कम हुआ है।
Well, today what I see is like एक fear psychosis create किया जा रहा है। There are other states as well जिनका special status है। अगर ये gradually वहाँ से start करते, could have been understood कि नहीं ठीक है, they're doing it for every. Starting from Kashmir, which is very fragile. If you see, it's a very delicate thing.
5 दिनों से पूरी तरह लॉकडाउन में रहे श्रीनगर में शनिवार को लोगों को थोड़ी छूट दी गई थी। यहाँ चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना के हथियार बंद जवान मुस्तैद हैं। बख्तर बंद गाड़ियों, स्नाइपरों, कटीली तारों और आते जाते सैन्य वाहनों के बीच आम लोगों के वाहन भी सड़क पर नजर आ रहे हैं। बकरीद के लिए भेड़े बेचने आए एक युवक ने हालात पर कुछ इस कदर नाराजगी जाहिर की।
ये मातम है,
बस
2-3
दिन
खुला, ये भी बंद हो गया। ये कौन सा फैसला, ये कौन सा फैसला मानने के लिए, बाकी तो यहाँ सब बंद है।
घाटी के ग्रामीण इलाकों से आए बहुत से चरवाहे ऐसे भी हैं जिनके नाम मवेशी बिक रहे हैं और शहर बंद होने की वजह से उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल पा रहा।
ईद पे ऐसा थोड़ी होता था, ईद पे लोग निकलते थे, बच्चों के लिए लाते थे अलग अलग, गरीब अपने एंगल से मनाता था, अमीर अपने एंगल से, लेकिन आजकल खाली दवाई लाता है और कुछ नहीं।
कुछ युवा साफ आसमान के नीचे बैठ डल झील के शांत पानी में कांटे डाल मछलियां पकड़ रहे थे। क्या शांति लौट रही है? इस सवाल पर वो बोले, ये तूफान से पहले की शांति है, ईद गुजर जाने दीजिए, कोई नहीं जानता यहाँ क्या होगा। इस बीच सार्वजनिक यातायात की सेवाएं बहाल ना होने के कारण भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और उन्हें पैदल सफर करना पड़ रहा है।
बहन के पास
जाना है। हाल चाल पूछने?
हाल चाल ना, फोन भी बंद है ना, फोन भी बंद,
फोन पे पूछे हाल चाल,
अब क्या बोलेंगे।
जो लोग श्रीनगर से दिल्ली लौट रहे थे उनके चेहरे पर भी बेचैनी साफ नजर आती है। श्रीनगर से दिल्ली आने वाली उड़ानों में अधिकतर वो मजदूर सवार हैं जो घाटी में काम कर रहे थे। इन पर दोहरी मार पड़ी है, एक तो काम छूटा, दूसरा महंगा किराया चुकाना पड़ रहा है। श्रीनगर से उड़ान भरते ही विमान सफेद बादलों के ऊपर आ जाता है। ये बादल शांति के प्रतीक लगते हैं, मगर शांति जो श्रीनगर की जमीन पर उतरकर न दिखाई देती है न महसूस होती है।
BBC संवाददाता दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट सुना रहे थे हमारे सहयोगी नवीन नेगी। जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को खत्म करने को भारत अपना आंतरिक मामला बता रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस फैसले के बहाने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश में जुट गया है। पाकिस्तान की कोशिशों और भारत के दावे को लेकर दुनिया क्या सोच रही है, इसी की पड़ताल की BBC संवाददाता वात्सल्य राय ने, सुनिए उनकी विशेष रिपोर्ट।
ये कश्मीर है, खूबसूरत वादियां, पहाड़ों की बर्फ से ढकी चोटियां और लुभाने वाली घाटियां। सदियों से इसे कहा जाता है जमीन पर जन्नत, लेकिन बीते कई दशकों से ये जन्नत सुलगती रही है और इस पर दावेदारी करने वाले दो मुल्क उबलते रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के पहले से तल्ख रिश्तों में कश्मीर को लेकर एक बार फिर कड़वाहट बढ़ गई है। इसकी शुरुआत भारत सरकार के कश्मीर पर लिए गए एक अहम फैसले से हुई। भारत सरकार ने अगस्त के पहले हफ्ते में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को खत्म कर दिया। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में विकास का पहिया थमा हुआ था। भारत सरकार के फैसले पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया तीखी रही। पाकिस्तान ने भारत का राजनयिक दर्जा घटाने, व्यापारिक रिश्ते खत्म करने और समझौता एक्सप्रेस को निलंबित करने का ऐलान किया। इमरान खान ने दावा किया है कि वो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र समेत हर संभव मंच पर उठाएंगे, लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इसमें दखल देगी, खासकर ये देखते हुए कि भारत इसे द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाने की बात करता रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मामले में दखल दे सकती है। परोक्ष रूप से इसका जवाब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दिया। उन्होंने दोनों देशों को 1972 में हुए शिमला समझौते की याद दिलाई, जिसमें दो तरफा बातचीत से मुद्दे को सुलझाने पर सहमति बनी थी। लेकिन सच ये भी है कि साल 1948 में सबसे पहले भारत ही इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर गया था। कश्मीर पर करीबी नजर रखने वाली राधा कुमार को मनमोहन सिंह सरकार ने कश्मीर पर बनी कमेटी का सदस्य बनाया था। वो कश्मीर की बारीकी से पड़ताल करने वाली किताब पैराडाइज एट वॉर, ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिख चुकी हैं। उन्हें सुनिए।
इसमें दो तीन अलग बातें हैं टेक्निकल कि यूएन ने उसको अभी तक रिमूव नहीं किया, मतलब ये नहीं कहा कि ये मैटर क्लोज है, तो उस हद तक सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स इस चीज को ले सकते हैं। पिछले कोई 40 साल से देखें शिमला अग्रीमेंट के बाद तो यूएन का ज्यादा इस पे असर नहीं रहा है।
यहाँ समझना होगा कि संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाने के बाद भारत बीते करीब 5 दशक से मामले के दो तरफा समाधान की बात क्यों करता है। आजादी मिलने के पहले से ही कश्मीर विवाद की वजह बना हुआ है। जब विभाजन की योजना तैयार हो रही थी और तय किया जा रहा था कि कौन सा हिस्सा भारत के साथ होगा और कौन सा पाकिस्तान को दिया जाएगा, तब मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि कश्मीर तो उनकी जेब में है। कश्मीर की आबादी मुस्लिम बहुल थी, लेकिन वहाँ के राजा हरि सिंह हिंदू थे। राधा कुमार अपनी किताब में लिखती हैं कि वो भारत या पाकिस्तान के साथ जाने के बजाय स्विट्जरलैंड के मॉडल पर कश्मीर को आजाद राज्य रखना चाहते थे, लेकिन अगस्त 1947 में विभाजन के साथ हालात बदलने लगे।
अब अगर हम आए फिर हमारी पार्टीशन और इंडिपेंडेंस पे, तो उस वक्त आपको याद है उसके 2-3 महीने बाद कश्मीर में जंग चला, उसी दबाव में एक्सेशन हुआ, हमारे ट्रूप्स गए और कश्मीर उस वक्त डिवाइड हो गया।
राधा कुमार लिखती हैं कि महाराजा हरि सिंह पहले पाकिस्तान के साथ समझौते के जरिए काम चलाने की कोशिश में थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने भारत का रुख किया। इस बीच 21 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर कब्जे के मकसद से खुद को आजाद आर्मी बताने वाले कई हजार पश्तून लड़ाके मुजफ्फराबाद पहुंच गए और श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, लेकिन 26 अक्टूबर को जब उन्होंने राज्य के भारत में विलय के प्रस्ताव पर दस्तखत किए, तब उन्हें मदद मिली। अगले ही दिन भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच गई और कथित आजाद आर्मी के लड़ाकों को पीछे धकेलने लगी।
उस वक्त बहुत प्रेशर थी खास इंडिया पर। उस वक्त आर्मी के दोनों तरफ आर्मी के जो चीफ थे वो अंग्रेज थे। हमारी जो आर्मी के चीफ थे अंग्रेज, उनको चुप करवाया, धमकियां दिलवाई, तो वो एक अलग समय था।
भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ने लगा तो तब के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू 1 जनवरी 1948 को ये मामला संयुक्त राष्ट्र में ले गए। कई भारतीय विशेषज्ञ इसे नेहरू की ऐतिहासिक भूल मानते हैं। राधा कुमार भी इस कदम को गलत मानती हैं।
यूएन में जाना गलती था। उस वक्त यूएन थी भी, बड़ी शुरुआत ही हुई थी उसकी, और कोई वजह नहीं थी ये मानने को कि यूएन किसी न किसी तरह जियोपॉलिटिक्स, ग्रेट पावर इन्फ्लुएंस वगैरह से दूर रहे।
संयुक्त राष्ट्र में 1948 में ही कश्मीर पर पहला प्रस्ताव आया। 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव संख्या 47 में जनमत संग्रह पर सहमति बनी। प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर पर नियंत्रण के मुद्दे को जनमत संग्रह से तय करने की बात कही गई। इसके लिए शर्त तय की गई कि कश्मीर से पाकिस्तानी लड़ाके बाहर जाएं और भारत कम से कम सेना रखे। लेकिन 1950 के दशक में भारत ने ये कहते हुए इससे दूरी बना ली कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह राज्य से नहीं हटी है और साथ ही इस भूभाग के भारतीय राज्य का दर्जा तो वहां हुए चुनाव के साथ ही तय हो गया। लेकिन भारत के इस दावे को संयुक्त राष्ट्र और पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुए युद्ध के बाद साल 1972 में हुए शिमला समझौते में दोनों देश इस मुद्दे का आपसी बातचीत से हल निकालने पर सहमत हुए, लेकिन पाकिस्तान अब भी कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश में रहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की गुजारिश के बाद हाल में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की थी। कश्मीर मुद्दे की गहरी समझ रखने वाले पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद कहते हैं,
देखें यही तो पाकिस्तान आर्ग्यू करता है कि इंडिया ही इसको इंटरनेशनल इशू बनाया और यूएन में लेके गया, तो अब फिर उसके बाद से नेहरू के बाद से फिर क्यों इंडिया की पॉलिसी जो है वो चेंज हुई है। पाकिस्तान तो अभी भी इमरान खान जो अमेरिका से होकर आए तो बड़े पॉजिटिव थे और बड़े खुश होकर आए कि ट्रंप ने उन्हें उम्मीद दिलाई है मीडिएशन की, और उनके सामने ही उन्होंने जब उन्होंने अपना जवाब खत्म किया तो इन्होंने कहा कि जी इस खित्ते के जो 1 अरब देशवासी हैं उन सबको इससे फायदा होगा अगर कोई सालसी कर सके और कश्मीर का मुद्दा हल करवा सके।
ट्रंप के दावे को भारत खारिज कर चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मध्यस्थता की बात की थी, लेकिन चीन की ओर से मध्यस्थता के सुझाव को समर्थन मिलने से कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण की पाकिस्तान की मंशा को मजबूती मिली। हालांकि पाकिस्तान की इस मंशा पर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं।
जब इमरान खान सरकार में नहीं थे तो वो एक सोल्यूशन की बात किया करते थे कि कश्मीर को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, डिवाइड कर दें और शायद यही इसका हल हो, तो शायद इमरान खान उसी 3 हिस्सों वाली बात सोल्यूशन पर कोई शायद अमल कर रहे हैं या अमेरिका में उन्होंने कोई ऐसी कमिटमेंट दे के आए हैं, और वो है कि जैसे ऐलान हुआ इंडिया ने किया कि 2 हिस्सों में बांट रहे हैं और तीसरा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, तो अगर उस तरह का कोई मुद्दा उस तरह से हल किया जा रहा है तो शायद उस तरह से हल हो पाए।
हारून रशीद कहते हैं कि कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि भारत ने जब अनुच्छेद 370 पर फैसला किया तो इमरान खान ने भारत पर दबाव बना सकने वाले अमेरिका और चीन जैसे देशों से संपर्क करने के बजाय तुर्की और मलेशिया के नेताओं से ही बात क्यों की। उधर राधा कुमार कहती हैं कि कश्मीर में पहले से ही कई पक्ष शामिल हैं, इसलिए ये मामला पेचीदा बना हुआ है।
यहाँ हमारी 2 तरह की प्रॉब्लम है, एक तो इंडिया पाकिस्तान है, दूसरा 2 डिवाइडेड कश्मीर भी है। अब डिवाइडेड कश्मीर में चीन भी आ जाता है। उस तौर पे अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, प्लेयर्स हैं और स्पॉयलर्स हैं, और वो सिर्फ एक देश के नहीं बट काफी सारे देशों के। अफगानिस्तान का जब वो तालिबान का रूल चला उस वक्त काफी अफगान भी आए थे।
लेकिन वो ये दावा भी करती हैं कि पाकिस्तान भले ही कोशिश करता दिख रहा है लेकिन इस मुद्दे पर उसे संयुक्त राष्ट्र या अन्य बड़े देशों का समर्थन मिलना मुश्किल है। वो याद दिलाती है कि बीते 50 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सिर्फ तभी दखल दिया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष जैसी परिस्थिति बनी हो।
मुझे लगता है कि जो बड़े पावर्स हैं वो इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं डाल पाएंगे। ठीक तरह से दखल करना, उसके साथ साथ इकोनॉमिक और मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस हमकी भी होनी चाहिए और वो तैयारी भी होनी चाहिए कि इसको हम इस्तेमाल करेंगे। उस तरह का मुझे नहीं लगता कि ना अमेरिका ना चीन में वो है कि वो आर्मी और इकोनॉमिक सैंक्शंस या इस तरह की चीज करेंगे फिलहाल।
वहीं हारून रशीद की राय भी ऐसी ही है। वो कहते हैं कि दुनिया इसे विवाद का मुद्दा जरूर मानती है लेकिन इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश में पाकिस्तान ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया है।
इंटरनेशनल कम्युनिटी पहले भी कोई पाकिस्तान ने काफी कोशिशें की, पिछले 10-15 वर्ष काफी इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कामयाबी हुई है। ह्यूमन राइट्स का इशू वो उठाते हैं जिसपे ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो बोलती हैं लेकिन देश नहीं बोलते। हर एक का अपना इंटरेस्ट होते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, दूसरे इंटरेस्ट हैं, तो वो इसको कोई इतनी अहमियत नहीं दे रहे। लेकिन एक इशू मानते हैं, हर जिस देश से आप बात करें वो मानता है कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसका हल होना भी बाकी है।
ये हल कब और कैसे होगा ये वो सवाल है जिसका जवाब कम से कम अभी मिलता नहीं दिखता है।
हमारे सहयोगी वात्सल्य राय की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। और अब बात केरल की, पिछले साल भीषण बाढ़ झेलने के बाद केरल इस साल फिर भारी बारिश के कारण तबाही की चपेट में है। उत्तरी केरल के कोझिकोड, वायनाड और मल्लपुरम जैसे इलाके बुरी तरह प्रभावित हैं। रविवार शाम तक 67 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें से 19 मल्लपुरम से ही हैं। बीबीसी संवाददाता दीप्ति बथिनी इस समय केरल में मौजूद हैं। कुछ देर पहले मैंने उनसे बात की और जानना चाहा कि वहां पर हालात कैसे हैं।
राहत शिविर में हूँ मैं, ये कैलिकट डिस्ट्रिक्ट के एक राहत शिविर में हूँ, तामरशहरी तालुका में। आज सुबह से जब से हम निकले हैं, हम वायनाड डिस्ट्रिक्ट गए थे जहाँ पे मैक्सिमम वर्स्ट अफेक्टेड हुआ है वहाँ पे फ्लड्स के, पिछले एक हफ्ते से भी। पिछले 2-3 दिनों में वहाँ पे काफी लैंडस्लाइड्स हुए थे जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है वहाँ पे। शाम को जब ऑफिशियल रिलीज आया है उसके हिसाब से कम 67 लोगों की मौत की खबर आ रही है, और ये ज्यादातर मौत जो हुए हैं ये लैंडस्लाइड्स की वजह से होने की खबर आ रही है। और वायनाड में जब हम गए थे वहाँ पे एक रिलीफ कैंप में, वहाँ पे ज्यादातर लोग जो पुत्तमल एरिया है वहाँ जहाँ पे लैंडस्लाइड्स हुए हैं वहाँ के लोग वहाँ राहत शिविर में थे। कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है, वहाँ पे बहुत सारे लोग वो लोग थे जो अपने करीबी लोगों की मौत की वहाँ पे वो लोग अपना अफसोस जता रहे थे। एक एक रिलीफ कैंप में अगर हमने देखा था कम से कम 500 से ज्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे। जहाँ पे हम गए थे मेपड़ी में एक रिलीफ कैंप था, वहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे गवर्नमेंट के और वहाँ पे जो NSS और NCC के जो वहाँ पे स्कूल के बच्चे थे वो काफी आगे आके वहाँ पे वॉलंटियर वर्क कर रहे थे।
दीप्ति, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना इलाका प्रभावित हुआ है, कितने जिले और कितने लोग, ये क्या कहा जा रहा है कि इतने लोग प्रभावित हुए हैं?
देखिए, पूरे केरला में 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे नॉर्थ केरला में कम से कम अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो कम से कम 9 डिस्ट्रिक्ट रेड अलर्ट पे है, जिनमें से वायनाड, कैलिकट और एर्नाकुलम, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट, कन्नूर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में, ये चारों डिस्ट्रिक्ट में काफी वहाँ पे वर्स्ट इम्पैक्ट हुआ है। ये पिछले साल भी जब यहाँ पे बाढ़ आई थी इसी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ज्यादातर इम्पैक्ट हुआ था। अभी जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी एक मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पे ज्यादातर लैंडस्लाइड्स हुए थे पिछले 2 दिनों में, वहाँ पे अभी भी 50 से ज्यादा लोग लैंडस्लाइड के नीचे दबे हुए हैं। उन लोगों को रेस्क्यू करने की अभी भी कोशिश जारी है।
जानकारी दे रही थी दीप्ति बतिनी की केरल में बाढ़ के कारण हालात कैसे हैं। और अब खेल समाचार सुनाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त।
जी आदर्श, अगर बात की जाए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की जो कि पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जा रहा है, वहाँ से ताज़ा समाचार ये कि आज भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला थोड़ा सा तब गलत साबित होता दिखा जब वेस्ट इंडीज़ के शेल्डन कॉटरेल ने शिखर धवन को केवल 2 रन पर ही पेविलियन भेजा और वो LBW आउट हुए। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने स्थिति को संभाल रखा है। रोहित शर्मा थोड़ा सा धीमा खेल रहे हैं, उन्होंने 23 गेंदों का सामना करते हुए 14 रन बनाए हैं, जबकि कप्तान विराट कोहली पूरी फॉर्म में हैं, उन्होंने 41 गेंदों का सामना करते हुए 39 रन बनाए हैं। इस तरह से एक अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच है। और 11वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट खोकर 61 रन था।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी। और अब विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के बाद भारत ने भी रद्द की समझौता एक्सप्रेस रेल सेवा। भारत प्रशासित कश्मीर के मुख्य शहर श्रीनगर में एक बार फिर से पूरी तरह बंदी का माहौल है। हांगकांग में कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें हैं। यहां शैमशुई जिले में पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के जुलूस पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। दक्षिण अलगाववादी लड़ाकों ने यमन के प्रमुख दक्षिणी पोर्ट पर कब्जा कर लिया है। सीरिया में सरकारी फौजों ने इदलिब प्रांत के एक कस्बे पर कब्जा कर लिया है। 3 महीने पहले आक्रामक फौजी कार्रवाई शुरू करने के बाद ये सबसे बड़ी सफलता है। रूस ने गूगल पर आरोप लगाया है कि वो अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हालिया सरकार विरोधी प्रदर्शनों को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला हमारे सहयोगी राजेश चौहान ने। कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार, शुभ रात्रि।